महाराजा ने कैसे इतना बड़ा भारी गुमान उनके अंदर में प्रवेश कर जाता है, अभी आपको सुनाएंगे ब्रज कोकिला जी। तो बड़ा उनको मान हो गया। कृष्ण मनाते मनाते थक गए, आज पैरों में भी अपने सिर को नवा दिया, आज मान नहीं रही। वो कुंड के एक तरफ में है और कृष्ण अंत में हार मान करके दुखित मन से इस पार में चले आए। उस समय में हवा चली, राधा जी जिस तरफ से हैं उस तरफ से हवा चली और राधा जी के श्री अंगों के अंचल को स्पर्श किया, उसको उड़ाया उस हवा ने। धन्याति धन्य पवन न कृतार्थना, एक तो सुंदर शीतल मंद सुगंध आसपास के पुष्पों से आ रही थी, बेली चमेली जूई कदम्ब इत्यादि के, और उसमें राधा जी के अंचल अंग से संस्पृष्ट जो अंचल है, राधा जी का सुगंध इतना है कि कृष्ण मतवारे बन जाते हैं, उन्मत्त बन जाते हैं उनके श्री गंधों से ही। इसलिए उस गंध को हवा लेकर के इस पार आते ही कृष्ण को लगी। कृष्ण सोचा जैसे आज राधिका जी ही हमें मिल गई, एकदम अपने जीवन को ही कृतार्थ माना। धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मानी, वो तो धन्याति धन्य पवन था, उसके स्पर्श से कृष्ण ने अपने को धन्याति धन्य माना। मैं उस दिशा को प्रणाम कर रहा हूं जिधर में श्रीमती राधिका जी हैं, और की तो बात किया। इस तरह से राधिका जी को नमस्कार दंडवत प्रणाम करके और वहां से नारद जी चले। इसलिए नारद जी का 15 दिन बाद कृष्ण का जन्म हुआ भाद्रपद की अष्टमी को, और उनका हुआ राधाष्टमी, इसके बाद वाले महीने में उनका जन्म होता है। बस एक महीने की 15 दिन की छोटी बड़ी है, वो है 14 वर्ष के, तो ये है 13.5 वर्ष की है। कृष्ण यदि 14.5 वर्ष के हैं तो राधा जी बस एक 15 दिन की केवल छोटी बड़ी का, और अभी कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी बड़ी हैं और कृष्ण छोटे हैं, कितने तरह के अनुमान लगाते हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो नित्य दोनों एक ही हैं, नित्य हैं, काल में आविर्भूत होने के कारण हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो छोटी हैं कि बड़ी हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों दो है ही नहीं है। इस तरह से राधिका जी का भी आविर्भाव हुआ। आप लोग अब इसके बाद में कीर्तन सुने, अब फिर विधिवत जैसा हम लोगों का कीर्तन पाठ होता है वैसा हो, इसके बाद में आरती
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रसन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुते तममते कृष्णं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरणांतिके।
कृष्ण के दामोदर लीला का वर्णन हम लोगों ने किया। भगवान सर्व कारण कारण सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न भी भगवान है, किंतु लेट
लेट हो गए,
ये लेट हो गया। यह बात ठीक है, उनकी जितनी भी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों में भगवान की करुणा शक्ति अथवा कृपा शक्ति सबकी चूड़ामणि है। भगवान ने मन ही मन में सोचा, मैया हमको बांध न दे, और साथ ही साथ में अघटन घटन पटियसी शक्ति बांधने नहीं दिया। आज जब यशोदा जी का परिश्रम देखा कृष्ण ने, पसीने से लखपत हो गई, क्लांत हो गई, असहाय बन गई, मैं इस नन्हे मुन्ने को मैं बांध नहीं सकती। अंत में अपने देवता के यहां शरणागत हुई, सालग्राम किला को नारायण समझकर, और मेरी लज्जा नहीं रहेगी, मैं कैसे मुक्ति खाऊंगी। उसी समय में भगवान को करुणा आ गई, कृपा शीत सबंधन, अर्थात उस समय में उनकी कृपा शक्ति झट उनके हृदय में आने से ऐश्वर्य शक्ति जो थी अघटन घटन पटियसी शक्ति वाली, वो अंतर ध्यान हो गई। और जब वो ऐश्वर्य शक्ति जब दूर हो गई, अपने आप बंधन में आ गई। आज तक इनको किसी ने नहीं बांधा, न ब्रह्मा ने, न शंकर ने, न सखाओं ने, किसी ने भी आज तक नहीं बांधा। बस एक बार इन्होंने बांधा यशोदा मैया ने, और एक बार राधा जी ने इनको बांधा था। राधा जी ने माने गोपियों ने बांधा था। ये तो हो गए यशोदा दामोदर, और गोपियों ने जो बांधा था वो है राधा दामोदर। कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद कृष्ण लजाते हुए और स्मित हास्य से उनके बीच में जब प्रकट हुए, मनमत मनमत, मनमत का भी मनमत करने वाले, मां मन को मतने वाले, गोपियों ने अपने अपने उत्तरियों का एक एक आसन बनाया। सब आसन बनाती तो गड़बड़ हो जाता, एक एक जूथ की बनाई तो भी करोड़ों आसन बन गए, एक एक जूथ की अलग अलग से एक एक, और कृष्ण उस पर बैठे। सब लोगों ने मिलकर के विचार किया, सखियों ने, ये तो बीच बीच में अंतर ध्यान हो जाते हैं, इसलिए इनको बांध रखना उचित। बांधा कैसे जाए, राधा जी से अंचल से उनका पीताम्बर का अंचल बांध दिया, जो अब कभी इनको छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसलिए तब से राधा दामोदर हो गए। हम यहां पर देखते हैं सेवा कुंज में जो राधा दामोदर जी हैं, ये राधा दामोदर हैं, बाल दामोदर यशोदा दामोदर वो नहीं है। ये तो सखिये ने उनके कमर में बांध करके राधा जी से सदा के लिए बांध दिया, इसलिए वो राधा दामोदर हैं। इसलिए यशोदा दामोदर की अपेक्षा भी, यशोदा दामोदर भी बहुत करुणाशील हैं, बड़े मधुर हैं, किंतु उनसे भी अधिक नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमोनंत लीलाय देवाय। इसलिए हम लोग इसी राधा दामोदर का नमन करते हैं, जो कि राधा जी के प्रेम से, गोपियों के प्रेम से इनके साथ में बंध गए और फिर कभी भी अलग नहीं होने वाले। यहाँ तक कि कल की कथा हुई थी, अब हम लोग इसके बाद की कथाओं का हम वर्णन करेंगे। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी इसके बाद की कथाओं को आरंभ करें। श्रीमद्भागवत की बड़ी मधुर कथाएं सुनी। श्रीमद्भागवत के श्रवण करने का एक ही फल है, दूसरा फल हम नहीं जानते। फल ये है, राधा कृष्ण के चरणों में यदि भजन करने की प्रवृत्ति किसी के अंदर में जन्म जाए तो ये भागवत का फल हो गया। और बार बार श्रवण करने पर भी राधा कृष्ण के चरणों में भजन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती तो वो भागवत पढ़ना क्या उसका जन्म भी वृथा है। निदेहम अत्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लौम सुकल्पम गुरु कर्ण धारण मयानुकूलेन न भक्षते ऋतम कुमान भवाभिम न करेत स आत्मा। वह व्यक्ति आत्मा अपने को आत्मा को मारने वाला आत्मघाती है, केवल फांसी लगा लेना ही, रेल के आगे गिर करके या बीज खा करके या आग में जल करके मरना ही आत्मघात नहीं है। उससे तो एक जन्म नष्ट हुआ। जो आत्मघाती हत्यारा भगवान का भजन नहीं किया उसने अपना कोटि कोटि जन्म अंत तक सब बेकार कर दिया, सब जन्मों के लिए आत्मघाती है। इस बार भी कहते हैं निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, बड़े सौभाग्य से यह मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ, सहज रूप में हो गया, हमारा इसमें कोई कर्तव्य आया, कोई धर्म कर्म नहीं किया जिसके बल पर ये मिल गया। ये तो भगवान ने करुणा करके दे दिया। क्यों दिया? वो अहेतु कृपालु देत ईश बिनु हेतु स्नेही, वो स्नेही जीवों के प्रति इसलिए ये शरीर दे दिया। और उस पर भी बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने गुरु कर्ण धारम इस शरीर में शरीर तो सुदृढ़ बनाया, अंधे लंगड़े दूल्हे नहीं बनाया, कान से सुनने लायक ये सुनेंगे नहीं ऐसा भी बहरा नहीं बनाया, सब प्रकार से सुजोग दिया। तो सुलभम सुदुर्लभम, ऐसा शरीर भी हमको सुलभ हो गया और उसमें गुरु कर्ण धारण गुरु वैष्णवों का भी संग मिल गया। किंतु वो दुर्भागा ने गुरु धारण नहीं किया, वो तो और दुर्भागा है। और उससे भी बड़ा दुर्भागा वो है जो गुरु धारण करके भी भजन नहीं करता है, वो और दुर्भागों में से वो दुर्भागा आत्मघाती है। और गुरु कर्ण धारण मयानुकूल लेना न भक्ति, और मेरा अनुग्रह जीवों पर तपर है। अरे इसीलिए तो वृंदावन मथुरा में ब्रज ने जन्म दिया, इसीलिए वृंदावन में मथुरा मंडल में ब्रजमंडल में किसी प्रकार से शादी का संबंध करा दिया, इसीलिए तो कहीं भी है उनमें प्रेरणा देकर के राजस्थान, कहां पंजाब, कहां बंगाल, कहां बिहार, कहां ये और कहां अमेरिका और कहां ऑस्ट्रेलिया, प्रवृत्ति देकर के साधुओं को भेज भेज करके उनको यहां पर बुलाया। ये भगवान की बड़ी कृपा है। नौका में केवल पतवार होने से नहीं चलता, उसमें यदि अनुकूल वायु हो और उसमें पाल तान दिया जाए और हवा उसमें भर जाए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो एकदम मिलों तक मिनटों में पहुंचा दे। तो ऐसी भगवान की भगवान का अनुग्रह है। कैसा? बिना पैसे ही यहां पर कि हजारों लाख रुपए खर्च हो सकते थे इतना सुंदर परिवेश बनाया। आप सभी लोग बना सकते हैं? सबके लिए संभव है ऐसा परिवेश बनाना? ये संभव नहीं है। ये भगवान की करुणा से कैसे कैसे सुंदर सुजोग पाठक वक्ता कीर्तनिया सभी यहां पर वृंदावन में यहां पर होने लगे। ऐसे ऐसे सुजोग भगवान की, ये अनुकूल वायु है। इतना भी यदि नहीं हुआ पाया भगवान को, भगवान का भजन नहीं किया तू आत्मघाती है करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए, इस जन्म में चूक गया, फिर अब मनुष्य जन्म मिलना असंभव है। तू अंधा है, तू देखता नहीं, तू एक दिन का देखता है भविष्य, करोड़ों करोड़ों जन्मों का यह भविष्य तू नहीं देखता, इसलिए तू आत्मघाती है। यदि इतना सुनने पर भी, जिसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, और ऋषि महर्षि लोग कह रहे हैं, अभी तक की गुरु परंपरा करी, आज तू सुन करके भी भगवान का भजन नहीं करता, तो तेरे जैसा और आत्मघाती और कोई व्यक्ति नहीं। तू देख नहीं रहा कि मृत्यु काल तुम्हारे सिर पर खड़ग लिए तैयार है, और तू देखता नहीं। कैसा है? बहुत से बैल और भैंसे होते हैं, उनको मथुरा वाले कसाई लोग खरीद लेते हैं और बॉम्बे के बूचड़ खाने में बेच देते हैं, एक दो नहीं दल के दल ले जाते हैं, मारते पीटते हुए वहां ले गए और ले जाकर के बूचड़ खाने के सामने थोड़ा सा घास, थोड़ी सी घास उनके सामने फेंक दी, और वो परस्पर उस घास के लिए लड़ रहे हैं, और उनमें से एक एक को या दस दस को, बीस बीस को पारी से कहां ले जा रहे हैं, या एक साथ में खड़े करके ऊपर से हथिरा गए, हजारों एक साथ में कट जाएंगे। वो एक थोड़े से घास के लिए लड़ रहे हैं और एक मिनट में उनकी पारी आने वाली है, इसको नहीं देख रहे। ऐसे हम लोग हैं, माया की तलवार, काल का कठोर ये तलवार हमारे सिर पर आज आ जाए या कब आ जाए कुछ भी पता नहीं, हम ऐसे अंधे और हत्यारे हैं जो जान सुन करके इतना सुजोग पाने पर भी भगवान का भजन नहीं करते। अभी कल मृत्यु हो जाएगी, कोई ठीक नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे सज्जनों, भागवत के शिक्षा अनुसार में आज ही से भजन करना आरंभ कर दो, कल से नहीं, आज ही से। अरे कल करो सो आज कर, और आज कर सो अब, पल में पर लय हो यगी, बहुत करोगे कब करेगा। मूर्ख लोग कहते हैं आज करो सो कल कर, और कल करो सो परसो, क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है परसों। वो मूर्ख अंधे हत्यारे लोग वो कहते हैं, किंतु सज्जन लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए आज ही से, कल से नहीं। अरे परसों शुभ दिन है, अरे आज ही यदि प्रलय हो गई तो ना? आज ही यदि हम मर गए तो फिर कल क्या होगा। शुभ दिन देखते 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 शुभ दिन देखने को यदि न मिला तो, इसलिए प्यारे भाइयों आज ही से भागवत का यही फल सुनने का है। आज ही अभी से एक सेकंड के देरी किए बिना आज ही से संकल्प करके भजन में लग जाओ। किंतु हाँ, इस संकल्प में कुछ बातें हैं, दोष हैं, भगवान का भजन क्यों नहीं। पहले भगवान ने पूतना को मारा। पूतना माने क्या है? पूतना जो सबके पुतों को मार रही है, लड़कों को मार रही है, वो पूत है, पूत रहे नहीं। पहला ये, और दूसरा उसका अर्थ है असल यथार्थ में पूतना माने जो पवित्र नहीं है, सब समय अपवित्र बनी रहे। वो क्या पवित्रता है? भागवत में पहले उन्होंने कहा द्यूतम पानम स्त्रियम सूना जत्रा धर्मो चतुर्थ। भाइयों भगवान का भजन करने के लिए द्यू लॉटरी फॉटरी जुआ इत्यादि मत खेलो पहले, नहीं तो भगवान का भजन नहीं होगा। पहली शर्त ये, किसी प्रकार का भी आजकल राज्य माने हमारा गवर्नमेंट ही जुआ खिला रही है, लॉटरी करना सिखाती, ये सबके चक्कर में मत पड़िए। पानम, पानम माने कोई भी तरह का मदिरा, बीड़ी सिगरेट चुरूट अफीम, चाय को भी ले लीजिए इसी में, चाय नहीं बनी देरी हो गई तो भागवत अब पीछे। महाराज जी 15 मिनट और जरा ये चाशनी करके आए, नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा, सट्टी समय पर नहीं आएगी। लो, अरे कब से तुम्हारे पुरखे लोग पीते थे, अभी तो पुरखों की तो बात छोड़ दी, अभी मैं समझता हूँ कि 40 वर्ष 45 वर्ष पहले अंग्रेजों ने चाय पिलाना बिना पैसे का सिखलाया, बिना पैसे, बल्कि उनको पैसा देते थे, चाय देते थे, दूध भी मुफ्त देते थे, सिखलाया भारत को गुलाम बनाने के लिए। इसलिए नहीं तो पेट खराब हो जाएगा और गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए दूतंग पान इसलिए माताओं को देख करके आदर करना सीखो, बहन माता लड़की के रूप में देखो। जिस समाज में स्त्रियों को महिलाओं को यथाचित सम्मान नहीं दिया जाता, वो समाज कभी भी ठीक ठाई नहीं रह सकता, उसमें सुख और शांति नहीं रह सकती। पुरुषों का ही कर्तव्य नहीं, स्त्रियों का भी कुछ कर्तव्य है, उनको भी माँ बहन और बेटी की तरह रहना चाहिए। यदि वो नहीं रहती तो उधर से भी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए दोनों का कर्तव्य है। माताएं भी, लड़कियां भी, बहुएं भी अपना मर्यादा में ही रह करके चले और पुरुष लोग उसका यथा योग्य सम्मान करें। जब रामचंद्र जी और कृष्ण उनका सम्मान करते हैं तो हम लोगों की तो बात किया। दूतं पान स्त्रियं सूना, कभी भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वध तो करने की तो बात ही क्या, तन से, मन से, वचन से किसी को कोई कष्ट मत दो। देखो तो वो समाज यहीं पर स्वर्ग और बैकुंठ सब यहीं पर उतर आएगा। इसलिए कृष्ण ने देखा यदि साधक नहीं पवित्र हो पा रहा है तो अंततः आत्मसमर्पण तो करेगा। तो भगवान क्या करते हैं, सासुओं के हृदय में रहने वाले जितने पाप हैं उन सबको पुतना की भांति सहज ही में नष्ट करता, खेल ही खेल में। इसलिए सबसे पहले पाप दूर होना चाहिए। दूसरी बात, तृणावर्त वह है आंख में धूल जोर देना। आंधी खूब जोर से आई और सब लोगों के आंखें अंधी हो जाती, भजन करके क्या होगा, भजन करने की कोई जरूरत नहीं। खाओ पियो मौज करो, विवाह शादी करो, बच्चे हो, भजन करने की क्या, कभी भगवान को किसी ने देखा? अरे जितने भगवान के भजन करने वाले हैं हमने देखा है, कहेंगे वो हाथ पसारते हैं, दांत निपोड़ते हैं, हमारे घरों में आते हैं, तो उनसे तो हम लाख गुने अच्छे हैं, भजन करने की क्या जरूरत। अरे हम भी मरते हैं, वो भी मरेंगे, बल्कि हमसे सब समय वो दुखी रहते हैं, इसलिए भजन सजन करने की जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मणों की कल्पनाएं हैं, वेद शास्त्र बेकार के हैं, न भगवान है, न ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। ऐसे ये तर्क जो हैं, युक्तियां संसारी लोगों को बड़ी भरी लगती हैं, इसलिए ऐसे तर्क जो हैं ये है तृणावर्त। भगवान देखते हैं कि हमारा भक्त बढ़ नहीं पा रहा है ऐसी युक्तियों से, इसलिए उसके अंदर में रहने वाले समस्त तृण रूपी ऐसे तर्क और युक्तियों को वो खंडन कर देते हैं। यह है तृणासुर का बल। और सकट आया, सकटासुर माने क्या है? भजन राज्य में दो चीजें हैं साधकों के सामने, एक है भारवाही और एक है सारग्राही। सकट पर सब चीजें कुछ लाद दी जाती है, उस पर लाद दिया, क्या लादा? संसार की कामनाएं, वासनाएं, बुरी आदतें जितने हैं, पाप ताप, वही लाद करके चलता है। शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद भक्त और भागवत भी पढ़ लिया है, किंतु स्वार्थ से ऊपर नहीं उठे, मलिन वासनाओं से हम ऊपर नहीं उठ सके, उन्हीं को लाद करके चलते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे, बड़े सुंदर से सुंदर भाषण देंगे। जैसे एक बड़े भारी दिग्विजयी पंडित थे, भागवत का खूब पाठ करते थे, तो कहीं वो पाठ कर रहे थे और काफी जनता वहां पर आई, उनकी पत्नी भी वहां पर गई। उन्होंने कहा भागवत और समस्त शास्त्रों का यह एक विशेष आज्ञा है, सबको एकादशी का पालन करना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर के लड़के लड़कियों से लेकर के 80 वर्ष तक के लोगों को एकादशी उपवास निर्जला करना चाहिए, और निर्जला न हो तो थोड़ा सा कुछ दूध और जल या शिकंजी पी करके रहा जाए, दूसरे दिन पालन करके किया। उनकी स्त्री ने को बहुत अच्छा लगा, कहा जी आज से ही, अभी अभी मैंने कुछ खाया नहीं, आज से ही मैं एकादशी कर दूंगी और रसोई सोई नहीं बनाऊंगी और आज निर्जला उपवास रहेंगे हम लोग। घर में आकर के निर्जला रहने के लिए वो रह गई। थोड़ी देर में उसके पिता पति कथा बांध कर और घर में आए, अरे कुछ खिलाए भी नहीं, तो आज तो हमने एकादशी की और आप भी कह रहे थे जल्दी से ले आओ ना तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, अभी हलवा और पूरी ले आओ। तो ऐसे ये सब जो हैं सकट पर भार वहन करने वाले ये जगत के भार स्वरूप हैं, जो स्वयं नहीं करते दूसरों को उपदेश देते हैं। राधा कृष्ण के ही एकमात्र भजन होना चाहिए, ये भागवत कहता है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहते हैं। और ऐसे कृष्ण जिनके चिर ऋणी हैं और कहते हैं न पारे हम निरवद्य संयुजन, मैं राधा जी के ऋण से गोपियों के ऋण से मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता, यही भजन ही सबसे भागवत का सार। ऐसे पंडितों को हम माने लाखों पंडित, दो एक अच्छे नहीं तो लाखों पंडित, सब त्रिपुंड भस्म धर्म धारण और द्वैतवादी लोग जितने हैं वो सब भागवत तो पढ़ेंगे, पैसा बटोरेंगे भागवत के द्वारा, अपने जीवन में आचरण नहीं करते, कृष्ण का भजन नहीं कर करके त्रिपुंड धारण करके शंकर जी दुर्गा काली और आजकल नई नई देवियां सब, कौन एक देवी संतोषी मैया एक उद्भूत निकली है और उन अजनी क्या क्या देवी देवता शनिश्चर शुक्र रवि नजनी क्या क्या गिनना असंख्य है। बीज फेंक देने से खेत में गेहूं और ये सब जितनी उपज होती है आज की पृथ्वी ऐसे उससे भी अधिक उपजाऊ है इन देवताओं को उत्पन्न करने में, ये भागवत का तात्पर्य। एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का भजन करने से तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, अभी दुर्वासा के चरित्र में आप लोगों ने सुना, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भागवत सुन करके क्या होगा बेकार का। यदि कृष्ण में अनन्य भाव नहीं हुआ, भागवत में अनन्य भावना नहीं हुई, गीता के उपदेशों को नहीं सुना तो फिर ये सब करके क्या होगा, बल्कि जान सुन करके ये करेगा उसके चरणों भगवान के चरणों में ये अपराध होगा। इसलिए कृष्ण में राधा जी में बल्कि कृष्ण से भी अधिक श्रीमती जी के चरणों में हम लोगों का ऐकांतिक अनुराग हो, इसलिए ये सकटासुर बने भारवाही। सारग्राही वो है जो शास्त्रों से सार ग्रहण करते हैं, वो है भगवत भजन, और भगवत भजन में कृष्ण भजन और उनमें भी राधा जी की दासी होकर के हम भजन करेंगे, ये सब का सार है। एक आया बकासुर, बकासुर माने कपटता, प्रत्येक साधकों के अंदर में ये कपटता रह सकती है। ये कपटता क्या है, भगवान का भजन किया एक आना और 15 आना अपनी आकांक्षाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते रह गए, उनसे ही मांग रहे हैं हमको पास सुनना है, लड़के की बीमारी हो गई है और तुझे शंकर जी के यहाँ गए चौपट दबाने लगे, ठाकुर जी एक आने के बताता आपको चढ़ाएंगे। लो भगवान बड़े स्वस्थ हैं, भगवान कभी कभी बड़े दुखी हो जाते हैं। एक बार बड़े दुखी हो रहे थे भगवान, लक्ष्मी जी ने पूछा भाई क्यों इतना चंचल और क्षुभ हो रहे। उन्होंने कहा कि क्या कहूं, हमको एक भक्त बड़ी जोर से बुला रहा है, जल्दी से आर्त होकर के बुला रहा है, तो आप पधारिए ना जल्दी से चले आए, तो मुश्किल तो ये है ना, हमको बुला रहा है नारायण नारायण नारायण, और मैं जाऊंगा तो वो कहेगा प्रभु आप अपनी लक्ष्मी हमको दे दीजिए, तो बतलाओ तो तुम्हें दे देना पड़ता, तो मैं कैसे रहूंगा। ये देखो लक्ष्मी मत चाहो, उनकी सेवा चाहो भाई। ये तो भागवत का तात्पर्य होना चाहिए। तो जो लोग ऐसे हैं ये कपटता के मूर्ति हैं, बकासुर हैं। कृष्ण क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों का ठोट बाहर करके और उसको एकदम चीर देते हैं। सबका नहीं चीरेंगे, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके भगवान से प्रार्थना है प्रभु मैं तो नहीं सकता, इसलिए आप हमारी सहायता करें, आप हमारे इन दोषों को दूर करें, तब ये होगा। और एक रह गया धेनुकासुर। धेनुकासुर को कृष्ण नहीं मारते, उसको गुरु मारते हैं। वो गुरु कौन है, विश्व ब्रह्मांड के वो गुरु हैं बलदेव। धेनुका माने होता है गधा, बड़े गधे हो। बड़े गधे हो माने क्या है, मूर्ख हो। मूर्खता को, अज्ञानता को गधा कहा जाता है। धेनु ये कंस का प्रधान चर है, सेवक है। वहां पर ताल के फल हो रहे हैं बड़े से सुंदर, और वो सब असुरों को खिलाता है। भगवान के लिए एक भी नहीं देगा, भगवत भक्तों को वहां पर जाने नहीं देता था। तो जो लोग इसके अनुचर हैं, धेनुकासुर के माने गधे हैं। गधे कौन है, गधा वह है जो सिर पर ले जा रहा है चीनी, बूरा, घी, मैदा सब ले जा रहा है, बड़े बड़े पकवान ले जा रहा है, किंतु अपने नहीं खाएगा। गधे देखिए जगत का भार ढोते हैं। क्या ढोते हैं, जितने गंदे कपड़े हो गए, मैले कुचैले, उनके पीठ पर लाद दो। और वो घाट पर गया, कपड़े साफ हो गए, वहां से फिर उनके पीठ पर लाद दो ले आए, अपने न तो पहनेगा न कुछ। इसी तरह से जो लोग जीवन निर्वाह करते हैं गधों के समान, अतः भगवान का भजन का उद्देश्य नहीं रखते थे, वो साफ गधे के समान। कैसे कहा, धर्म ही नहीं ना पशु, और पशुओं में कैसा, जिसका सिर और सिंह नहीं, सिंह भी नहीं और पूंछ भी नहीं। तुलसीदास ने तो बड़ी गजब की गाली दी है जो भजन नहीं करते हैं। तो इस तरह से गधे को दूर करने के लिए, गधापन को दूर करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए बलदेव गुरु भगवान ने कहा ये भक्त हमारे पास नहीं आ रहा, इसके अंदर में गधा झुका हुआ है ना, धेनुकासुर आप ही इसको दूर कीजिए। तब गुरु उसके हृदय में रहने वाली जो अज्ञता है, कृष्ण ही एकमात्र जगत के आराध्य हैं, भजन ही उनको प्रसन्न करने के लिए यथार्थ उपाय है, ये सब कह करके और गधे को धेनुकासुर का वो वध करते हैं। अभी काली यथा, काली क्या है, ये बिना किसी कारण का क्रोध और हिंसा की प्रतिमूर्ति है। सांप किसी को छेड़ने पर ही काटते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बिना छोड़, बिना किसी छेड़ने से छाने से, कहीं गया आदमी और देखा झट काट दिया, ऐसे ये बिना कारण के ही क्रोध करने वाले हैं। काली भी ऐसा है, सब असुरों को मारा, कालियों को क्यों नहीं मारा, जितने असुर हैं सबको कृष्ण या बलदेव जी ने मारा। और ये काली कृष्ण के वस्त्रक्षल में काटा, बड़े कोमल हिस्सों को काटा, गले में काटा, जिसे अभी तुरंत मर जाए, इतना विरोध किया, किंतु कृष्ण बस एक कारण से उसे नहीं मार पाए। वो क्या, ये जब तक कृष्ण से जूझता रहा तब तक तो ये चुपचाप तटस्थ रही, मर जाए अच्छा है, ऐसे पति का संग हम नहीं करना चाहती जो भगवान का विरोधी हो। बड़ी लज्जा और ग्लानि से भर गई और प्रार्थना करी ये जल्दी से जल्दी मरे। किंतु जब कृष्ण के चरणों के आघात से उसके समस्त छत्र टूट गए और लहू उगलने लग गया, तो सोचा जी अरे हमारी पत्नियां तो कहती थी जब विष्णु से विरोध मत कर, गरुड़ से विरोध मत कर और कृष्ण से विरोध मत कर, तो मैंने माना नहीं। आज मालूम होता है ये इसके शरीर में इतना भार है, जो गरुड़ से मैंने युद्ध किया किंतु कुछ भी मेरा नहीं हुआ, किंतु आज मैं इसके भार को सहन नहीं कर पा रहा, आज मैं मरा जा रहा हूं। तो उसने कहा हे प्रभु, हे भगवान, कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण को तो बालक समझा, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका शरणागत हो रहा हूं, अब से मैं विष्णु वैष्णव का द्रोह नहीं आचरण करूंगा, आप मुझे किसी किस प्रकार से मेरी रक्षा। जो ही उन लोगों की पत्नियों ने जब समझा, जैसे ऐसे इसकी भावना बदल गई, तो कहा ये सब ऐसा पति मरना नहीं चाहिए, अब तो कुछ भगवान की भक्ति आई। बस कृष्ण जो उसे मार रहे थे वो हाथ जोड़ करके उनसे ये पाठ कस्या अनुभव अष्टन देव विद में इसकी व्याख्या श्रीमान शुभानंद जी ने किया है। कहते हैं कि कौन काल में काली ने कौन जन कैसे सुंदर सुंदर कार्य किए हैं, जिसके फल से आज स्वयं जो ब्रह्मा जी चरण जिसको नहीं सेवा कर सकते, आज वो चरण कमल इसके सिर पर, और ये चाहता है कि इसको भगा दें, चरण को एक सेकंड रखे नहीं, और ये जोर पूर्वक भगवान उसके चरणों पर सिर रखते हैं। ये भगवान की है सुखी दया, उतना चाहती है हम उनको छुड़ा करके फेंक दें, और फिर भी वो नहीं छोड़ते, जोर से पकड़ लिए हैं। ऐसे काली उनके चरणों को फेंकना चाहता है, कृष्ण को मारना चाहता है, और जोर जबरदस्ती उन चरणों को जो लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे चरणों से उसके ऊपर में रख रहे हैं। बतलाओ तो काली का कैसा सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिले। वो गोपियां वो कह रही हैं नाग पत्नियां, ये प्रभु अब से इसकी रक्षा होनी चाहिए। बस इसी कारण से अपने भक्तों के कारण उन्होंने काली को प्राण दान दे दिया और उसको भक्ति प्रदान करके रमणक ने दे दिया। ये सब भागवत की कथाओं के भीतर में सब रहस्य छिपे हैं। ऐसे ऐसे समस्त लीलाओं में हम इन रहस्यों को ग्रहण करके और अपने जीवन में ही भक्ति करें, भगवान का भजन करें, और इन सब अनर्थों को छोड़ करके तो हमारा भागवत श्रवण करना सार्थक होगा, और हम भी कृष्ण की भक्ति लाभ करके जीवन से साथ। आज यही सब कह करके अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। एक कीर्तन कर दीजिए, इसके बाद में आरती। आज सब
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपादेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। वैराग्य युग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायं मानं भेत्मन्दं कृपां बुधिर्जा पर दुःख दुःखी सनातन संप्रभु श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदन्ति यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव कुत्रेति तन्मयतया सर्वोधने सवैवास्मी सवैवास्मी न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे माम शरणं।
से हम लोगों के कितना सातवां दिन है, सातवां दिन, आज सातवां दिन हम लोगों का निर्विघ्न रूप से चल रहा है। छह दिन का श्रीमद् भागवत प्रवचन बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। आज हम लोगों का सातवां दिवस है, आज हम लोग अष्टपंचाध्याय के बीच से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। आज हम लोग शाम तक रुक्मिणी विवाह तक हम लोग पहुंचेंगे और कल एकादश और द्वादश स्कंद की कथाओं का और उपदेशों का वर्णन होगा, साधनों का वर्णन होगा। कल हम लोगों का प्रसंग आया कि कृष्ण ने शाम को चंद्र उदय के साथ बंसी वादन किया, जगौ कलम बाम दृशा मनोहरा। कल संक्षेप में श्रीमान शुभानंद जी ने इसका तात्पर्य बतलाया और भी अधिकारी लोग हैं उसको समझें, मैं भी संक्षेप में थोड़ा सा स्पष्ट रूप में और इसको बतला रहा हूं। जगौ कलौ कलम माने क और ल दोनों मिलकर के क्ल हुआ, अपनी बंसी में बजाया। बाम दृशा माने होता है स्वर्ण वर्ण का अ आ ई ई है, उसमें बाएं से चौथा अक्षर, तो क्या हुआ दीर्घ ई, तो क और ल में लग गया दीर्घ और उसमें मनोहरा, मनोहर मैंने हुआ मन को हरण करने वाला, मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्र हैं, बड़े मनोहर हैं। तो ये जो मनोहर मन को हरण करने वाले हैं और मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्र, अब वो क और ल लगा है और उस पर ई आई है, उसके ऊपर में लगा दीजिए तो वो मनहर कब होगा, जब उसके अंदर में एक और बिंदी लग जाएगी, अन्यथा नहीं, तो उसमें बिंदी भी लग दो। तो ये वैदिक मंत्र हुआ, यही मंत्र पहले ओंकार है कच्ची स्थिति में सब साधारण के लिए, किंतु ये परिपक्व स्थिति में आने पर यही बदल करके रूपांतरित होकर ओम ही क्लिंग बन जाता है। यही ओंकार, ओंकार का तात्पर्य है गायत्री। गायत्री परिपक्व होने पर भजन करते 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 वो काम गायत्री के रूप में परिणत होती है, यही ब्रज की उपासना है। बीज में जो होगा कार्य में वही प्रकटित होगा, कारण में जो है वही कार्य में प्रकटित होगा। जो चीज कारण में ही नहीं है वो कैसे प्रकटित होगी कार्य में, इसलिए इसके अंदर कृष्ण उपासना की सबसे बड़ी भावना इसमें है। यही पीछे से ये विस्तृत होकर और प्रकटित होकर के ये गोपाल मंत्र अथवा कृष्ण मंत्र होता है, इसलिए ये सबको आकर्षण करने वाला होता है। ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि के लिए पहले वो तप तप कर रहे थे, किंतु ये सृष्टि कैसे होगी उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो कृष्ण प्रेरित शुद्धा सरस्वती जी ने इनको यह मंत्र दिया। बहुत दिनों तो करते 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 जब रहे तो कृष्ण ने अपने बंसी के तान से उनको काम गायत्री का मंत्र दिया और तब से उनको इनकी सिद्धि हुई। इसीलिए हमारे संप्रदाय के ये आदि गुरु माने जाते हैं ब्रह्मा जी। कृष्ण से इनका निकटतम संबंध है और इन मंत्रों को जपने वाले हैं, किंतु थोड़ी सी उनमें त्रुटि ये हो गई। ये मंत्र ऐसे हैं सिद्ध मंत्र, आप मंत्र जपते समय जैसी भावना करेंगे वैसा ही फल देंगे। यदि ये मंत्र जपते जपते अर्थ हो जाए रुपया मिल जाए और मंत्र जप कर रहे हैं तो रुपये मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए। यदि ये मंत्र जपते जपते किसी भी कार्य की भावना आप लोगों ने की तो उस चीज को देख करके अंतर्हित हो जाता है यह मंत्र, अवश्यंभावी ये फल देने वाला देगा ही जरूर जो कोई भावना कर। इसलिए ब्रह्मा जी ने जगत सृष्टि के लिए चेष्टा की थी और उसी के लिए ये मंत्र जप कर रहे थे, किंतु यह राधा कृष्ण का ब्रज का प्रेम देने वाला है, गोपी भाव देने वाला है, इसलिए उनको वो शक्ति और सामर्थ्य दे दी जिससे जगत की सृष्टि करे। पीछे से अपनी आयु के 100 वर्ष में